ज्ञानतिम्रांदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्या मनोविष्ठां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाक्ष च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताक्ष। नमो विष्णुपादाय कृष्णापेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरु भिक्षा कृपा सिंधु एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकालनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 6 अध्याय 15 और श्लोक संख्या 6 जिसका आज हम पाठ करेंगे। तो नारद तथा अंगिरा ऋषियों द्वारा राजा चित्रकेतु को उपदेश। तो कथा का सारांश आप जानते ही होंगे किस तरीके से राजा चित्रकेतु अपने पुत्र की मृत्यु हो जाने पे गहन शोक में डूबे जा रहे हैं, उनकी पत्नी और वो स्वयं, और इस समय उनको ढाढ़स बंधाने के लिए सांत्वना देने के लिए नारद मुनि और अंगिरा ऋषि वहां पहुंचे हैं। तो इस अध्याय में उनको नारद मुनि और उनके द्वारा जो है ढाढ़स बताया जा रहा है, संतप्त, उनको शोक संतप्त से जो है उनको उबारने का प्रयास किया जा रहा है। तो जैसे इसमें लिखा गया है शुरुआत में, इस अध्याय में अंगिरा ऋषि नारद सहित राजा चित्रकेतु को ढाढ़स बताते हैं। वे दोनों राजा को अत्यधिक शोक से विमुक्त करने और उसे जीवन के अत्यधिक महत्व के विषय में उपदेश देने के लिए आए थे। अंगिरा मुनि तथा नारद मुनि ने बताया कि पिता तथा पुत्र का संबंध वास्तविक नहीं है, यह माया का प्रदर्शन मात्र है। यह संबंध न तो पहले था न भविष्य में रहेगा। काल की व्यवस्था से इस संबंध का अस्तित्व वर्तमान काल में ही रहता है। मनुष्य को क्षणिक संबंधों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। संपूर्ण दृश्य जगत क्षणिक है, यद्यपि यह असत्य नहीं है, किंतु फिर भी वह वास्तविक नहीं है। भगवान के आदेश से इस संसार में उत्पन्न प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर है। अस्थाई व्यवस्था से पिता के पुत्र उत्पन्न होता है या जीवात्मा तथा कथित पितृ का पुत्र बनता है। यह अस्थाई व्यवस्था परमेश्वर द्वारा की जाती है। न तो पिता का न ही पुत्र का कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो इस प्रकार से ये सार है इस अध्याय का। अब आगे चलते हैं। आज का श्लोक तो छठा है, लेकिन एक दफा मैं शुरू से दोहरा देता हूं ताकि हम इसको रिकॉल कर लें, पूरे क्या बातचीत हो रही है इन दोनों महान ऋषियों के बीच में और राजा चित्रकेतु के बीच में। तो श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, जब राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर अपने पुत्र के शव के निकट पड़े थे, मृत प्राय पड़े हुए थे, तो नारद तथा अंगिरा नामक दो महर्षियों ने उन्हें आध्यात्मिक चेतना के संबंध में इस प्रकार उपदेश दिया। तो राजा चित्रकेतु जो है अपने पुत्र के पास पड़े हुए हैं, मृत शरीर के पास पड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा जो है वो विलाप कर रहे हैं। तो उस समय दोनों ऋषि आए हैं तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोयम स्यात्तो वा राजेंद्र भवान यम अनुशोचति तम चास्य कतम सिष्टो पुरेदानम इतम परम। हे राजन, जिस शव के लिए तुम शोक कर रहे हो उसका तुमसे और तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध है? तुम कह सकते हो कि इस समय तुम पिता हो, वह पुत्र है, किंतु क्या तुम सोचते हो कि यह संबंध पहले भी था? क्या सचमुच अब भी यह संबंध है? क्या भविष्य में भी यह बना रहेगा? उसके बाद यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतौ वेगेन बालुका संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिना। हे राजन, जिस प्रकार बालू के छोटे छोटे कण लहरों के वेग से कभी एक दूसरे के निकट आते हैं और कभी विलग हो जाते हैं, उसी प्रकार से देहधारी जीवात्माएं काल के वेग से कभी मिलती हैं तो कभी बिछुड़ जाती हैं। यथा धाना सुवैधाना भवन्ति न भवन्ति च एवं भूतानि भूतेषु चोदितानि मायया। जब बीजों को धरती में बोया जाता है तो वे कभी तो उगते हैं और कभी नहीं उगते। कभी धरती उपजाऊ नहीं रहती, जिससे बीजों का बोना निरर्थक हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति से बाधे होने पर भावी पिता को कभी संतान की प्राप्ति होती है तो कभी गर्भ ही नहीं रहता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे माता पिता जैसे बनावटी संबंध के लिए शोक ना करे, क्योंकि अंततः इसका नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में रहता है। वयम च त्वम च ये चे मे तुल्य काला चराचरा जन्म मृत्यु यथा पश्चात प्रांग एवं अधुनापि भो। हे राजन, तुम तथा हम अर्थात तुम्हारे परामर्शदाता पत्नियां मंत्री और समस्त संपूर्ण जगत में इस समय जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं वे सभी क्षणभंगुर हैं। यह स्थिति ना तो हमारे जन्म के पूर्व थी और न हमारी मृत्यु के पश्चात रहेगी। अतः इस समय हमारी स्थिति क्षणिक है, अस्थाई है, यद्यपि वह मिथ्या नहीं है। तो अब हम आज का श्लोक करेंगे तो आप मेरे पीछे जो है दोहरा सकते हैं। भूतैर भूतानि भूतेशा सर्जत्यवती हन्ति च आत्मसृष्टैः स्वतन्त्रैरन् अन्पेक्षोऽपि बालवत्। भूते कुछ जीवों से, भूतानि अन्य जीवात्माओं को, भूत ईशः सबके स्वामी श्री भगवान, सर्जति उत्पन्न करता है, अवति पालन करता है, हंति मारता है, च भी आत्मसृष्टि अपने द्वारा उत्पन्न, अस्वतंत्री पराधीन, अनपेक्षा सृष्टि में न रुचि रखने से, अपि यद्यपि बालवत बालक के समान। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, शिला प्रभुपाद की। तो सबों के स्वामी तथा प्रत्येक वस्तु के मालिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निश्चय ही क्षणिक दृश्य जगत में तनिक भी रुचि नहीं रखते। तो भी जिस प्रकार समुद्र के किनारे पर बैठा हुआ बालक अनचाही किसी न किसी वस्तु घरौंदा को बनाता है, उसी प्रकार से भगवान प्रत्येक वस्तु को अपने वश में रखते हुए सृजन पालन तथा संहार का कार्य करते रहते हैं। वे पिता से पुत्र उत्पन्न कराकर सृष्टि करते हैं, प्रजा के कल्याण हेतु सरकार या राजा नियुक्त करके पालन करते हैं तथा सर्प जैसे माध्यमों से संहार करते हैं। सृजन पालन तथा संहार करता माध्यमों की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं होती, किंतु माया के सम्मोहन से वे अपने को कर्ता पालक तथा संहारक मान बैठते हैं। तात्पर्य, किसी में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह वास्तव में स्वतंत्र रूप से सृजन पालन तथा संहार कर सके। अतः भगवत गीता 3.27 का कथन है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमुढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति के तीन गुणों से भ्रमित होकर मोहग्रस्त जीवात्मा अपने को ही कर्ता मान बैठता है, जबकि समस्त कर्म वास्तव में प्रकृति द्वारा संपादित होते हैं। श्री भगवान के निर्देश से प्रकृति गुणों के अनुसार जीवात्माओं को सृजन पालन तथा संहार के लिए प्रेरित करती है, किंतु परमात्मा तथा उसकी प्रतिनिधि प्रकृति से अनजान रहकर जीवात्मा अपने को कर्ता मान बैठता है। वास्तव में वह कर्ता है ही नहीं, मनुष्य को परम कर्ता परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। इस समय संसार में जो असंतोष छाया हुआ है उसका कारण नेताओं की अविद्या है, जो यह भूल जाते हैं कि श्री भगवान ने उन्हें कार्य करने के लिए भेजा है। चूंकि उन्हें ईश्वर ने नियुक्त किया है, इसलिए उन्हें चाहिए कि उनसे परामर्श लेकर तदनुसार कार्य करें। परामर्श के लिए भगवत गीता नामक ग्रंथ है, जिसमें परमेश्वर ने सारे निर्देश दे रखे हैं। अतः जिन्हें ईश्वर ने सृजन पालन तथा संहार कार्यों के लिए नियुक्त कर रखा है, उन्हें चाहिए कि ईश्वर से परामर्श लेकर उसी के अनुसार कार्य करें, तब प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट रहेगा और कोई अवस्था नहीं फैलेगी। तो आपने सुना दोनों ऋषियों को, दोनों ऋषि जो शोक संतप्त हैं उनको सांत्वना दे रहे हैं। तो जो शोकाग्रस्त होता है उसको सांत्वना की आवश्यकता होती है। उस समय बड़े से बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी कई दफा शोकाग्रस्त हो जाते हैं, और उस समय भक्तों की आवश्यकता पड़ती है कि कोई आकर के उनको उनके उस शोक को ढांढस बंधाए। तो पहले तो प्रायः यह हुआ करता था, तो संत महात्मा जन जो है आया जाया करते थे घरों में, अब तो वो काफ़ी कम हो गया है, है ना। नहीं तो, प्रायः ये संसार ही शोकाग्रस्त है। यहाँ केवल एक राजा की बात नहीं है, पूरा संसार ही प्रायः शोकाग्रस्त है, और सभी को संतों और महात्माओं की बहुत आवश्यक है। तो यहाँ दोनों ऋषि जो है राजा को ढांढस बधा रहे हैं, और सही समय है जब व्यक्ति शोक में होता है तभी उसको उपदेश दिया जा सकता है। जब शोक में नहीं तो उपदेश देना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को भी उपदेश दिया, पहले उसको मोहग्रस्त किया, शोकग्रस्त किया, और फिर उपदेश दिया। तो भगवान ने क्या कहा अर्जुन को, अर्जुन को कहा अशोच्यान अनवशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूच नानु शोचति पंडिता। भगवान ने कहा तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न मृत के लिए शोक करते हैं। तो भगवान ने जो है गुरु की भूमिका निभानी शुरू की है अर्जुन के समक्ष। क्यों? कि अर्जुन ने 2.7 में भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया, गुरु के रूप में स्वीकार किया और कहा शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, शादी माम मुझे उपदेश दीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। तो जब अर्जुन ने गुरु के रूप में कृष्ण को स्वीकार किया तो भगवान ने गुरु का पद संभाल लिया और उसको कहा कि तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। विद्वान न तो जीवित के लिए और न मृत के लिए शोक करते हैं, इसलिए गुरु का सर्वप्रथम कर्तव्य यह होता है कि वो अपने शिष्यों की कमी को निकाले। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन की कमी बतला रहे हैं और यह कमी है कि वो उसके लिए शोक कर रहे हैं जिनके लिए उसे शोक नहीं करना चाहिए। और शिष्य का कर्तव्य है कि वह गुरु के मुख से अपने दोषों को सुने, उसको अपने दोषों को सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में वर्णन है कि व्यास जी अपने आश्रम में शोक मग्न बैठे थे, इतना कुछ जो है उन्होंने वेदों का विभाजन किया, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, महाभारत की रचना की, लेकिन फिर भी शोक का मग्न थे। तो उस समय नारद मुनि आए तो उन्होंने उनका आदर सत्कार किया, उनको आसन दिया और उन्होंने पूछा कि भाई आप शोक मग्न क्यों हैं। तो उन्होंने बताया कि उस आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही इतना सब कुछ करने के बाद भी। तब नारद मुनि ने उनको उनकी कमी बताई। तो कमी निकालना गुरु का कार्य है और कमी निकालने के साथ साथ गुरु जो है शिष्य को टूटने भी नहीं देता। ऐसा नहीं कि कमी बता करके चले गए। गुरु क्या करता है, गुरु की भूमिका ऐसी होती है जैसे कुमार की भूमिका होती है। जब कुमार किसी मिट्टी के बर्तन को बनाता है, कच्ची मिट्टी को, तो वो बाहर से उसको पीटता है ना, उसको रूप देता है, लेकिन पीटते समय क्या करता है, उसको अंदर से आसरा दे देता है, वो उस बर्तन को टूटने नहीं देता। तो इसी तरीके से गुरु जो है वो कमियां निकालते हैं लेकिन फिर भक्ति, कृष्ण भक्ति, कृष्ण कथाएं देकर के साथ साथ उसका पोषण भी करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कई दफा अपने शिष्यों को जो है वो कमियां निकाली और कई दफा उनके शिष्य जो बड़े हतोत्साहित हो जाते थे प्रभुपाद के कठोर वचनों को सुन करके, लेकिन फिर बाद में प्रभुपाद जो है उनको बड़े प्रेम से वापस बुलाते थे और उनको बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुना करके, किसी को प्रभुपाद किसी को नीचे नहीं गिराना चाहते थे। गुरु कभी भी अपने शिष्य को जो है कभी भी नीचे नहीं गिराता, उसकी कमियां इसलिए बताता है ताकि वो आगे बढ़े। तो यहां पर जो है नारद मुनि और अंगिरा ऋषि भी एक तरीके से गुरु की भूमिका निभा रहे हैं और उनको ये उपदेश दिया जा रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और नारद और अंगिरा ऋषि राजा चित्रकेतु को उपदेश दे रहे हैं कि शोक मत करो, अपने परिजनों के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये तो है मायावादियों का दर्शन, उनकी फिलॉसफी कि जीव जो है वो सत्य है और जगत क्या है मिथ्या है। लेकिन वैष्णव दर्शन क्या है, भ्रम सत्य और जगत अनित्य, टेम्परेरी, मिथ्या नहीं है अनित्य है। तो ये जो बात है जो ये कही जा रही है ऋषियों के द्वारा कि जीवात्मा जो है उसका कोई संबंध नहीं है वास्तव में किसी से, और इस श्लोक में विशेष रूप से ये बताया गया है, भगवान यहां ये बता रहे हैं कि भूते कुछ जीवों से भूतानि, अन्य जीवात्माओं को भूत ईशा सबके स्वामी श्री भगवान सृजति उत्पन्न करते हैं और पालन करते हैं और हंती मारते हैं, और जीव जो है पराधीन है। मतलब यह है कि भगवान कुछ जीवों के माध्यम से कुछ जीवों की उत्पत्ति कराते हैं, कुछ जीवों के माध्यम से कुछ जीवों की उत्पत्ति कराते हैं और पालन कराने के लिए क्या करते हैं, किसी को भी, जैसे सरकार को, है ना, यहां लिखा है पालन कराने के लिए क्या करते हैं, कल्याण हेतु राजा को नियुक्त करते हैं या सरकार को नियुक्त करते हैं, राजा भी भगवान का प्रतिनिधि होता है, और संहार करने के लिए सर्प जैसे माध्यमों से संहार करते हैं। तो ये नहीं समझना चाहिए, आगे लिखा है सर्जन पालन तथा संहार करता माध्यमों की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं होती, किंतु माया के सम्मोहन से वे अपने आप को कर्ता पालक तथा संहारक मान बैठते हैं। तो किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं सर्जन करता हूं, ये मेरे बच्चे हैं, मैं पालन करता हूं, या सर्प को यह नहीं समझना चाहिए कि मैं संहार करता हूं। अब सर्प तो नहीं है, अब तो बहुत नई नई है ना ठाकुर जी की वो आ रही हैं, जिसके कृपा से सर्प की जगह अब करोना आ गया, करोना। सर्प तो अब देखने से नहीं मिलते, लेकिन नए नए जो है बीमारियां करोना के रूप में आ रही हैं, कैसे कैसे जीव जंतु ऐसे आ रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हालत हो रही है करोना से। तो ये एक्सटर्नल रीजन है, किसी की मृत्यु हो जाना चाहे वो कोरोना से हो चाहे सर्प से हो चाहे किसी, ये बाह्य कारण है। आंतरिक कारण क्या है, आंतरिक कारण तो भगवान है, चाहे वो जन्म का कारण हो चाहे वो मृत्यु का कारण हो चाहे पालन का कारण हो। इसलिए सदैव इस बात को समझना चाहिए, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण। लेकिन हम अपने आप को कारण समझ लेते हैं जब इस भौतिक जगत में आते हैं, जो कि प्रभुपाद ने कहा प्रकृति क्रियमाणानी गुणे कर्माणी सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इत्यमन्यते। जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं भौतिक गुणों के द्वारा ये कार्य हमको प्रेरित किया जाता है, कोई भी कार्य कराया जाता है भौतिक गुणों के द्वारा, लेकिन हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। तो इसीलिए सारा बंधन जगत में इसीलिए है कि हम गुणों के वशीभूत होते हैं और अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। तो बात यह आती है कि भाई क्या करें, अगर हमारा कोई प्रियजन चला जाए, हमारा कोई मित्र बंधु कोई चला जाए, तो क्या क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए, क्या विचार है आप लोगों का बताइए। हाँ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बाहर हाँ क्या संभव है, ये क्या संभव है। देखिए कह देना आसान है कि बाहर से शोक करना चाहिए, अंदर से अनासक्त रहना चाहिए, जिसके ऊपर बीतती है उसको पता लगता है, उसको पता लगता है। तो केवल कक्षा को सुनकर के हमें नहीं चला जाना चाहिए, उसके ऊपर चिंतन मनन कितना संभव है, कितना संभव है इस तरीके से करना। शोक किए बगैर कई दफा हम नहीं रह पाते, चाहे हम भक्ति में कितने भी बड़े चढ़े बढ़ जाएं, समय आने पे शोकग्रस्त हो ही जाते हैं। अभी तो ये जीव है, हम तो भौतिक चीजों के लिए भी शोक करते हैं। अगर एक छोटा सा मोबाइल भी हमारा गुम हो जाए तो उसके लिए भी हम शोकाग्रस्त हो जाते हैं कि मेरा ये गुम हो गया, मेरा ये हो गया, तो ये तो जीवात्मा है, चला गया। तो पूर्ण रूप से उनको कोई इतनी वो नहीं है। एक करोड़ रानियां है ना, से एक पुत्र संतान मुश्किल से प्राप्त हुई और वो चला गया, तो उनका जो है संताप करना, रोना स्वाभाविक था, स्वाभाविक था। लेकिन कहां है गलती, कहां है, इसको समझना चाहिए। भगवान ने भी शोक प्रकट किए हैं स्वयं, जो भगवान ये श्लोक बता रहे हैं कि आपको शोक नहीं करना चाहिए, जो चले गए हैं और नहीं गए उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान ने भी शोक किया, कहां कहां शोक किया है भगवान ने। जब लाक्षाग्रह में पांडवों समाचार आया कि पांडव जो है कुंती माता के साथ जल करके जो है भस्म हो गए, हालांकि भगवान जानते थे कि वो सुरक्षित हैं, लेकिन समाज के रीति के अनुसार है ना वो वहां गए हस्तनापुर, और हस्तनापुर जाकर के उन्होंने सबके सामने शोक प्रकट किया। ऐसा नहीं कि भगवान ने कहा जो चले गए तो चले गए, कोई बात नहीं। हाँ, बाहर से किया, लेकिन कितना बाहर से कितना अंदर से, अभी उसको हम समझेंगे। देखिए वही मैं कह रहा हूं कि भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। वो कभी तो अर्जुन के माध्यम से 64 करोड़ है ना योद्धाओं की वध भी करवा सकते हैं, और भगवान कभी किसी को जीवित भी रखते हैं। मारे कृष्ण तो राखे केन, राखे कृष्ण मारे केन। तो ये भगवान की बड़ी स्वतंत्रता है, कोई थंब रूल नहीं है कि भगवान ने एक दफा ये श्लोक कह दिया भगवत गीता में तो एज इट इज ये चलेगा, ये नहीं है। देखिए तो हस्तनापुर में भगवान गए और शोक किया। अच्छा, इसी बीच में जब वो हस्तनापुर गए थे तो कृष्ण और बलराम के न रहने पर द्वारका में शतधन्वा ने श्री कृष्ण के श्वशुर तथा सत्यभामा के पिता का रात को सोते हुए वध कर दिया, सत्राजीत का। और उस समय सत्यभामा जो है द्वारका से चल करके हस्तनापुर आई और आकर के कृष्ण को इस अप्रिय घटना की जानकारी दी। उस समय कृष्ण ने क्या कहा, जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, जीव को तो जाना है। नहीं, कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा। कृष्ण ने कहा यह बहुत दुखद घटना है और उनके नेत्रों से अश्रु बहा है। तो मानव समाज की रीति का अनुसरण करते हुए उन्होंने कष्ट की बात कही और आंखों से आंसू भी निकले उनके। ये नहीं कि भाई चला गया तो कोई बात नहीं, मेरा ससुर था, कोई बात नहीं है, पिता तो आपके थे, ऐसा नहीं कहा। और जिस समय शालु ने युद्ध स्थल में श्री कृष्ण के समक्ष अपनी माया से वसुदेव जी को दिखाया, युद्ध में वसुदेव जी को दिखाया और उनके सामने जो है वसुदेव जी की गर्दन काट दी। हालांकि कृष्ण जानते थे कि ये माया है, लेकिन फिर भी कृष्ण ने एक मुहूर्त तक यानी 48 मिनट तक सामान्य मनुष्यों की मुद्रा में शोक करते रहे। जब उन्होंने देखा वसुदेव की गर्दन काट दी, हालांकि जानते थे कि ये माया, भगवान से क्या चीज छिपी हुई है, लेकिन फिर भी 48 मिनट तक उन्होंने शोक किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कि हमें इन बातों के लिए शोक नहीं करना चाहिए, परंतु फिर भी श्री कृष्ण मानव समाज की रीति के अनुसार शोक करते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण अर्जुन पर दोष क्यों लगा रहे हैं, कि आप उनके लिए शोक कर रहे हैं जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्यों फिर दोष लगा रहे हैं जब शोक कर रहे हैं, भगवान स्वयं शोक कर रहे हैं। जब भगवान गए सांदीपनि गुरु के पास में, तो उनके गुरु ने अपने पुत्र के लिए शोक किया और दीक्षा में क्या मांगा, मुझे मेरा पुत्र ला दो। तो भगवान कह सकते थे किसके लिए शोक कर रहे हो, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं कहा। क्या किया, गुरु को पुत्र ला करके दिया, पुत्र ला करके दिया। देवकी के 6 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए। जब भगवान गए और देवकी को पता लगा साक्षात भगवान है, मेरा पुत्र साक्षात भगवान है, तो उसने कहा कि जब तुम अपने गुरु का पुत्र ला करके दे सकते हो, तो मेरे 6 पुत्र कृष्णा ला दो, मैं मिलना चाहती हूं, मैं देखना चाहती हूं उनको। तो भगवान ने इनकार नहीं किया, भगवान उन 6 पुत्रों को, भगवान एक कार्य से कई कार्य सिद्ध करते हैं, ये हमारे आपके बस की बात नहीं हिसाब लगाना कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। वो 6 पुत्रों को प्रकट किया, 6 पुत्र आए और देवकी के अंदर ममता इतनी स्नेह उनका हुआ, जागृत हुआ, उसने उनको स्तनपान कराया 6 पुत्रों को, और उन 6 पुत्रों ने वो स्तनपान किया जो कृष्ण ने उनका अधामृत किया था, और वो स्तनपान करके वो पाप मुक्त हो गए। वो कथा है कि उनको कैसे श्राप मिला था ब्रह्मा जी के द्वारा, वो हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे और देवकी के गर्भ में आए थे, देवता थे लेकिन असुर बन गए थे। जब उन्होंने देखा था कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के पीछे मोहित हो गए हैं, तो वह हंस पड़े थे, तो ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि असुर योनि में जाओ, तो हिरण्यकश्यपु के पुत्र बने और फिर देवकी के गर्भ में आए। देवकी के गर्भ से कंस ने उनकी मारा और अब वो जो है वापस यहाँ आए हैं, और देवकी का जो है स्तनपान करके वो जो है परम पवित्र हो गए, और फिर वहां से भगवान ने स्पर्श किया एक तो, और देवकी का स्तनपान कराया जिसको भगवान स्वयं स्तनपान कर चुके थे, तो उनके सारे पाप और सारे श्राप मुक्त हो गए और परम धाम को, परम लोक को चले गए। तो ये भगवान की योजना होती है, किसको मारना है, किसको जीवित रखना है। भगवान समय के हिसाब से, काल के हिसाब से, स्थान के हिसाब से और कई कारणों के हिसाब से सही को गलत और गलत को सही कर सकते हैं। आपको कुछ समझा देंगे, भगवान किसी को कुछ समझा देंगे। तो भगवान भी शोकाकुल हो जाते हैं, और जब देवकी ने कहा कि मेरे पुत्रों को वापस ला दो, तो भगवान ने ला दिया। जब उनके गुरु ने कहा मेरे पुत्र को वापस ला दो, ला दिया। लेकिन फिर करना क्या चाहिए, शोक करें या ना करें, लेकिन इसके लिए हमें इस श्लोक को बड़े ध्यान से समझना होगा, 2.11 को, भगवत गीता के 2.11 श्लोक को अच्छे से समझना होगा। इसका तात्पर्य क्या है, इसके संस्कृत के शब्दों को समझना होगा। देखिए इसमें शब्द देखिएगा, अशोच्यान अनवचोचस्तम, अर्थात अनु वशोचस्तम। अनु का मतलब होता है निरंतर शोक नहीं करना। इस श्लोक में 2 बार अनु आया है, अनु स्मरण, निरंतर स्मरण करना। तो इसमें है, इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो अनुशोचस्त्वम, अर्थात अनु अशोचत्वम। अनुशोच मतलब निरंतर शोक मत करो, निरंतर शोक ही करते रहो। जैसा कि आज के इस श्लोक में है, वो शोक करते करते मृत प्राय हो गए थे, मतलब मृत के समान हो गए थे। तो भगवान यहां क्या कह रहे हैं, अनु अशोचत्वम, और आगे दूसरी लाइन में भी फिर कहा है ना अनुशोचन्ति पंडिता, कि पंडित जो है अनुशोचिता, बार बार शोक नहीं करते, करते हैं, एक बार किया अपने आप को संभाला, बार बार नहीं शोक ही करते रह जाओ। तो इस श्लोक का ये बड़ा ये मतलब है कि अनुशोचंती, बार बार शोक नहीं करना। शोक तो होता है लेकिन फिर हमें संभलना है, संभलना है और समझना है इस संसार के इस स्वभाव को, समझना है कि यह संसार क्या है, अनित्य है। यहां कोई भी हमेशा एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, आज नहीं तो कल हमारे को अलग होना ही है। कभी संयोग है तो कभी वियोग है। जीवात्माएं प्रारब्ध के अनुसार एक दूसरे से मिलती है, एक समय तक साथ रहती हैं और फिर बिछुड़ जाती है। इस बात को समझ करके फिर हमें शोक से दूर होना है। शोक तो होगा, जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो संबंध बन जाते हैं, मोह भी होता है, लेकिन फिर उस मोह को त्यागना है, ये नहीं कि उस मोह में ही पड़े रहना। तो इस बात का जो है, अभी अगर आप इस ये जो हमने ये आज का जो दूसरा श्लोक पढ़ा था उसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है, पहली लाइन में दूसरे इसका आज के जो है दूसरा श्लोक, दूसरा नंबर श्लोक चलाइए। कोयम स्यात्तव राजेंद्र भवान यम अनुशोचति, अनुशोचति यहां भी वही शब्द है। अनुशोचति का मतलब बार बार शोक क्यों कर रहे हो, यही बात यहां पर नारद मुनि और अंगिरा ऋषि कह रहे हैं। तो जब हमको ये समझ में आ जाए कि भाई है तो कठिन एकदम से, लेकिन शोक होगा, शोक होने के बाद फिर हमको उससे बाहर निकलना है। जब भगवान महाप्रभु के रूप में आए और शिवास पंडित के घर में कीर्तन कर रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे, तो शिवास पंडित के पुत्र चले गए, लेकिन शिवास पंडित कौन थे, स्वयं नारद थे, है ना, नारद के ही पुत्र चले गए। तब नारद ने क्या किया, नारद ने पता था उनको कि मेरा पुत्र चला गया है, लेकिन उन्होंने बाधा नहीं डाली, उन्होंने कहा महाप्रभु का कीर्तन नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि एक वो विशेष बहुत ही उच्च स्थिति पे थे ना। हम जैसे साधारण जीव है ना, हमारे अंदर इतनी शक्ति कहां से आ सकती है, इतनी शक्ति तो नहीं आ सकती। जब भगवान के गुरु कह सकते हैं कि मेरा पुत्र वापस ला दो, जब देवकी कह सकती है मेरे छह पुत्र वापस ला दो, तो फिर ये तो भगवान की कृपा से ही हमारा जो है अज्ञान दूर हो सकता है, हम अपने प्रयास से नहीं कर सकते, बदजीव है ना, बदजीव है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने बहुत कुछ हमको दिया है भगवद गीता के माध्यम से, हमको एक एक बात समझाई है, लेकिन साथ साथ हमारे को क्या करना है, भगवान की भक्ति में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये स्वाभाविक रूप से हमारे को वैराग्य प्राप्त होता है। आप देख सकते हो है ना, अपना अपना बुखार, हमको कितना बुखार है ये हम खुद चेक कर सकते हैं, कितने हम आसक्त हैं ये खुद चेक किया जा सकता है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, जनात्य आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। तो जैसे जैसे भगवान की भक्ति करेंगे तो वैसे वैसे शीघ्र ही वैराग्य आ जाता है, ज्ञान भी आएगा वैराग्य भी आएगा। लेकिन जब जब हम माया के संपर्क में आते हैं, माया के सब संपर्क में आते हैं, तो फिर माया मुग्ध जीवेर नहीं, क्या है, हाँ, जो ये नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। कृष्ण कैला क्या है? कृष्ण वेद पुराण। तो माया मुक्त जीव जो है, तो माया में हम जो है, माया भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसके फलस्वरूप जो है हम मोहित हो जाते हैं और माया हमको नियंत्रित करती है ना। और नियंत्रित कब करती है? जब हम नियमों को तोड़ते हैं तब माया हमको नियंत्रित करती है। जब हम भोग करना चाहते हैं, जब हम भोग करना चाहते हैं तब फिर माया हम पे हमको झपट लेती है। माया को ऐसे समझना चाहिए जैसे किसी देश में पुलिस है, पुलिस है ना। पुलिस का क्या कार्य होता है? पुलिस का कार्य है आपको नियंत्रण करने का नहीं होता। पुलिस का कार्य क्या होता है? आपकी सहायता करने का। प्रभुपाद लिखते हैं अपने लेक्चर में कि जो पुलिस फोर्स है वो आपको नियंत्रण करने के लिए नहीं है। किस लिए है वो? वो आपकी सहायता करने के लिए है। लेकिन वो नियंत्रित कब करती है? जब हम नियम को तोड़ते हैं तब फिर हम पुलिस के बंधन में आ जाते हैं। फिर जैसे हमको पुलिस चलाती है हमको वैसा चलना पड़ता है। इसी प्रकार से जब हम इस जगत में आकर के माया के संपर्क में आकर के नियमों को तोड़ते हैं, भगवान के नियमों को तोड़ते हैं, जब जीव भोग वांछा करता है, भोग करना चाहता है भगवान को भूल करके, तो फिर माया जो है झपटिया धरे उसको झपट लेती है। और फिर मैं और मेरा, अहम ममेति, संसार, अगर संसार चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए ये तीन गुण हैं, अगर हम इन तीन गुण से दूर रहें, इन तीन गुणों से दूर रहें तो फिर सृष्टि का चलना मुश्किल हो जाएगा भगवान की। ये कर्तापन है तभी तो संसार में प्रजनन हो रहा है, पालन हो रहा है, कर्तापन की वजह से। अगर कर्तापन समाप्त हो जाए तो सब लोग वैरागी हो जाएंगे। लेकिन इस संसार से अगर बाहर निकलना है, अगर संसार से बाहर निकलने की इच्छा है तब फिर इस कर्तापन से दूर होना होगा। अगर इस भगवान की बहिरंगा शक्ति से बाहर निकलना है, जेल से बाहर निकलना है, तो फिर ये कार्य करना होगा और वो केवल गुरु की कृपा से हो सकता है। गुरु हमारे को इतनी शक्ति और ज्ञान दे सकते हैं कि हम इस मोहग्रस्त संसार में रहते हुए भी शुद्ध सत्व की तरफ आगे बढ़ें। तो इसी तरीके से जो आज का ये श्लोक है, इसमें और कोई बात आपको समझ में आती है जो आज का है? एक दफा मैं दोबारा इसको देख लेता हूं। भगवान ने कहा, भूतैर भूतानि भूतेश, भूत कुछ जीवों से भूतानि अन्य जीवात्माओं को भूत ईश, सबके स्वामी श्री भगवान सृजति उत्पन्न करते हैं। भगवान ही उत्पन्न करते हैं लेकिन माध्यम किसको बना लेते हैं? कुछ जीवों को माध्यम बना लेते हैं, कुछ जीवों से कुछ जीवन की उत्पत्ति कराते हैं और पालन कराते हैं। माता से भी पालन कराते हैं बच्चों का, सरकार भी प्रजा का पालन करती है, राजा भी प्रजा का पालन करता है। तो माता को भी ये नहीं समझना चाहिए कि मैं अपने बच्चे का पालन कर रही हूं। माता पिता को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे कारण से घर चल रहा है, मैं ही तो हूं घर चलाने वाला। तो वो भगवान किसी से भी कार्य कराते हैं प्रेरणा दे करके, और किसी भी बीमारी से, चाहे वो किसी भी माध्यम से जो है अंत आ जाता है, चाहे वो सर्प के उससे हो, चाहे वो हार्ट फेलियर हो, चाहे वो किडनी फेलियर हो, चाहे वो कोरोना हो, कोई भी डिसीज हो, तो ये सब भगवान की योजना है। तो बहुत से रीजंस जो हैं, कारण, इसको कहते हैं बाह्य कारण, एक्सटर्नल रीजंस जो हम देखते हैं, इस गाड़ी वाले ने उसको मार दिया, ये दुर्घटना हो गई, वो दुर्घटना हो गई, ये सब बाह्य कारण है। इन बाह्य कारणों, ये बाह्य कारण जो है, ये हमको किस में फंसाते हैं? कर्तापन में फंसाते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता मिथ्य बन जाते। ये जितने भी बाह्य कारण हैं, ये हमको कर्तापन में फंसाएंगे। लेकिन हर कारण के पीछे सोचना चाहिए आंतरिक कारण क्या है। आंतरिक कारण एक ही है, क्या? ईश्वरः परमा कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। हर कारण में उसको देखना है। हर कारण में जब उसको देखेंगे तो फिर क्या हो जाएंगे? फिर हम इस तरीके से विलाप नहीं करेंगे, बार बार विलाप नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत होगा लेकिन संभल जाएंगे। जब भगवान के वचनों का स्मरण करेंगे, भगवान के द्वारा बोले गए उपदेशों को समझेंगे, तो फिर बार बार नहीं, फिर मृत पाए नहीं हो जाएंगे। हमने देखा है संसार में कई लोगों के जब परिजन चले जाते हैं, वो पागलों की तरह जो है वो रोते हैं, बहुत बहुत ज्यादा संभलते ही नहीं, है ना। तो वो क्या है, वो दिखाई देता है कि भाई उनके अंदर अज्ञान ज्यादा भरा हुआ है, वो देहात्म बुद्धि में है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने आप को संभालते हैं तो हमें पता लगता है कि अब हमारा बुखार उतना नहीं है, अब कम है, अब हम उतने विचलित नहीं हो रहे। तो ये सब भक्तों की कृपा से, गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से हमको ये प्राप्त होता है कि हम इन तीन गुणों से बाहर निकले हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कोई टीका या कुछ कहना चाहते हैं आप में से, तो आपका स्वागत है। दूसरी लाइन कल बताएंगे। हरि का भजन करने से ही ये माया के दोष जो है वो जाते हैं। सही बात है, ठीक है। हाँ विद्या को तो अपनाना पड़ेगा, लेकिन समाज में जब हम रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, तो समाज में हमारे को कुछ, जैसे भगवान ने भी शोक किया, तो भगवान तो अविद्या में नहीं थे ना, भगवान कहाँ थे अविद्या में। लेकिन जब हम समाज में रहते हैं तो हमारे को समाज के अनुरूप थोड़ा जो है उसको स्वीकार भी करना पड़ता है, है ना। तो जब द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध हो गया रात को सोते हुए, तो कोई एकदम तो ये नहीं कह सकता ओके ठीक है कोई बात नहीं, शोक तो होता है, लेकिन शोक से बाहर निकलना है, है ना। जब तक हम इस संसार में हैं तो बिल्कुल विरक्त नहीं हो सकते, बिल्कुल विरक्त नहीं हो सकते, लेकिन कितनी जल्दी हम उस घटना से अपने आप को अलग कर लें, है ना, कितनी जल्दी हम अपने आप को उस घटना से अलग कर लें, ठीक है, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि घटना घटी और हम कहें ओके, ये नहीं, कुछ समय के लिए आपको झटका लगेगा, लेकिन उस झटके से बाहर कितनी जल्दी हम निकलते हैं यही ज्ञान है ना। हाँ, श्रीवास वो मैंने कहा कि श्रीवास पंडित जो हैं वो स्वयं नारद मुनि हैं, है ना। तो वो क्या है, वो शुद्ध सत्य के स्तर पे हैं। हम इसमें प्रकृति में है ना, हम भौतिक प्रकृति में हैं। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, प्रकृति क्रियमाण है, हम गुणों के अधीन हैं, हम शुद्ध सत्य में तो नहीं है ना, हम शुद्ध सत्य में नहीं है, उस तरफ प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे को कहीं ना कहीं घटना विचलित कर सकती है, लेकिन इन उदाहरणों को देख करके हम तुरंत अपने आप को संभाल सकते हैं।
प्रभुपाद ने एक शिष्य को बोला था, शिष्य का पिताजी चले गए, हाँ, तो बोले कि मुझे राइट करना है, ये करना है। तो प्रभुपाद बोले कि अपना भक्ति छोड़ के वहां नहीं जाना है, हमें नहीं लेना है, वो अपने आप
है। देखिए, प्रभुपाद ने भी रोका था समय के हिसाब से और परिस्थिति के हिसाब से, और किससे आप बात कर रहे हैं। प्रभुपाद सबको तो नहीं रोकेंगे, जैसे भगवान ने सबको तो नहीं कहा, इट डिपेंड्स टू होम यू आर टॉकिंग, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन सो मैनी थिंग्स, दिस इज नॉट अ थंब रूल दैट दिस इज ओके पास। तो जो भी है, जीवात्मा जा रहा है आ रहा है, आप शोक नहीं करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। शोक होगा लेकिन शोक से बाहर निकलना है। हाँ हाँ हाँ, तो बोल दीजिए। अर्थ भी बता दीजिए।
हरि माया कृत दोष गुण, भगवान के ये जो माया उसके अनुसार बनाई है, उसी के अनुसार हमको गुण और दोष जो हमारे अंदर आए हैं, हम उनको दूर करना चाहते हैं, लेकिन ये हरि माया कृत दोष बिना हरि भजन में चाहिए, ये गुण और दोष बिना हरि की भजन के, बिना ईश्वर के भजन के नहीं चाहिए।
बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये दवा खा रहे हैं ना, ये दवा खा रहे हैं सब दोषों की, सब रोगों की ये दवा खा रहे हैं। और इसको दवा खाते खाते, दवा हमको खाना है, लेकिन भगवान की कृपा से और गुरु की कृपा से हम इन दोषों से मुक्त हो सकते हैं भविष्य में, है ना, हमको इतनी शक्ति मिले। लेकिन अभी तो प्रयास ही है, अभी हमारी साधना भक्ति है, साधना कर रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महापुराण की, शिला प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदी।